SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने की उम्मीद अब संभव होती दिख रही है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो किसान नेताओं युद्धवीर सिंह और बलबीर सिंह राजेवाल से फोन पर बात की, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने 4 घंटे चली बैठक में सरकार से अपनी लंबित मांगों पर बात करने के लिए 5 सदस्यीय पैनल चुना। किसान नेता श्री युद्धवीर सिंह, श्री बलबीर सिंह राजेवाल, श्री शिव कुमार कक्का, श्री अशोक धवले और श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस पैनल के सदस्य हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बात कर बांटने की कोशिश में है, इसीलिए 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है जो सरकार से बाकी बचे मुद्दों पर बात करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बैठक का ब्यौरा देते हुए बताया,
एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी, वो 30 ग्रुप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है, जो भी सरकार से बातचीत करेंगे किसी भी मसले में बात होगी तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं, उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है।
किसानों के बाकी बचे हुए मुद्दों में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, किसानों पर दायर मुकदमों की वापसी, राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए मुआवजा शामिल हैं। मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के साथ मिलकर एक समिति बनाने का आश्वासन तो दिया है, मगर बाकी मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संसद में एक प्रश्न के जवाब में मोदी सरकार ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया।
Question was asked in Parliament as to whether the government is going to compensate 700 farmers who were martyred. And government answered, we have no record of these 700 people. We did some homework and we have 403 people who the government of Punjab has compensated 5 lakh rupees each and has given jobs to. We also have another list where we have 100 names of other people not in Punjab from other states. And there is a third list which is public information of names, addresses, phone numbers which can easily be verified. So this list exists. But the government insists on saying that such a list does not exist. Prime Minister himself has said that he has made a mistake. He has apologized to the nation. Well, as a result of that mistake, 700 people have died. Now you're lying about their names. Why? Why don't you have the decency to give them what is their due? The government of India should pay their compensation and help these families.
इस बीच चुनावी जंग के चलते हुए पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने भाजपा के ऊपर उनको खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और समय रहते उसके प्रमाण देने की भी बात कही है।
आपके पास कुछ नहीं है किसी भी स्टेट में तो दूसरी पार्टियों को तोड़ दो, तो दूसरी पार्टियों से खरीद लो, तो जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, गोवा में किया। बहुत बड़े नेता का मुझे भी फोन आया था कि आपको क्या चाहिए, आम आदमी पार्टी छोड़ दो, बताइए आपको रकम चाहिए, पैसे चाहिए, या फिर आपको हम कैबिनेट मंत्री बना देंगे मोदी कैबिनेट में, बताइए पोर्टफोलियो क्या चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं मिशन पे हूँ, मैं कमीशन पे नहीं हूँ, आपका खुलासा जल्दी कर देंगे उनका। जिस पार्टी ने 750 किसानों की जान ले ली, जिस पार्टी ने मतलब लखीमपुर खीरी में कीड़े मकौड़ों की तरह रौंद दिया किसानों को, जो पार्टी हमारे चाचे ताए या हमारे छोटे बड़े भाइयों को देशद्रोही, मवाली, गुंडे, पता नहीं क्या क्या कहती है, उनकी कुर्सी लेने से तो अच्छा है हम कम खा लेंगे लेकिन जमीर नहीं बेचेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल 5 लोगों का पता चला है। ये सभी अफ्रीका की यात्रा कर लौटे थे। इनमें से 2 केस कर्नाटक में और 1-1 केस महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में मिला है। भारत सरकार के दिए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें इस मामले में सतर्कता बरत रही हैं और दूसरे देशों से आए सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट और जोखिम में रखे गए 14 देशों से आए लोगों की 0 जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही हैं। इस बारे में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया,
टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स LNGP में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा LNGP में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो साथ में हैं, उनको टेस्टिंग के लिए इनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है, टेस्टिंग द्वारा कराई गई है। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सिक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सिक्वेंसिंग की हो चुकी है और 1 उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से।
भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के 2796 नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बिहार द्वारा अपने कोविड डेटा को दोबारा जांच करने के बाद ये आंकड़े सामने आए, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 473,326 हो गई है। उत्तर पूर्व के संवेदनशील राज्य नागालैंड के मोन ज़िले में सुरक्षा बलों के एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में गलत पहचान के चलते 13 स्थानीय लोग मारे गए, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ट्वीट कर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घटना की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में विपक्ष के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के 6, 2-2 सांसद तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के और 1-1 सांसद CPIM और CPI के शामिल हैं। विपक्षी दलों और संसद के कई जानकारों का कहना है कि निलंबन संसदीय नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि घटना पिछले सत्र की है और निलंबन को अगले सत्र के लिए टाला नहीं जा सकता। पिछले मानसून सत्र में इन सांसदों ने 3 कृषि कानूनों की वापसी और पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा के मुद्दों पर आखिरी दिन सदन की कार्यवाही को बाधित किया था। राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू ने निलंबन को ठीक ठहराते हुए सांसदों से माफ़ी मांगने को कहा है। सभी विपक्षी पार्टियों के इनकार करने पर श्री नायडू ने निलंबन को जारी रखा है। और आइए अब सुनते हैं खेल जगत के समाचार। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। जीत के लिए अब भारत को केवल 5 विकेट लेने हैं, जबकि न्यूजीलैंड के आगे 540 रनों का विशाल लक्ष्य है, जिसमें वह 5 विकेट के नुकसान पर केवल 140 रन ही बना पाया है। स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल पिच पर भारत ने पहले खेलते हुए 325 रन बनाए थे, जिनमें सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने 150 रनों का और अक्षर पटेल ने 52 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। न्यूजीलैंड के भारतीय मूल के खिलाड़ी एजाज पटेल ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय पारी के सारे 10 विकेट झटके। यह श्रेय प्राप्त करने वाले वह दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। उनके पहले केवल इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ही यह चमत्कार कर पाए हैं। इस उपलब्धि के बारे में बात करते हुए एजाज पटेल ने कहा,
These kind of things probably don't really sink until later, if I'm honest with you. Obviously, it is a special moment. I'm not going to lie about that. It's brilliant for me, not only me, but my family, you know, my mum and dad and all their support, and my wife and all her support. And it's never easy being a cricketer. You spend a lot of time away from home, and to be able to come back home to Mumbai and to Wankhede and to be able to produce something like that is quite special. And I'm grateful to God that, you know, he's blessed me with this, I suppose, occasion in my cricketing journey. So it's really, really special for me.
पहली पारी में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज की अचूक गेंदबाजी का सामना कर पाने में न्यूजीलैंड की टीम असमर्थ रही और मात्र 62 रनों पर लुढ़क गई। अश्विन ने 8 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि सिराज ने 19 रन देकर 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में तेजी से रन बनाते हुए भारत ने 7 विकेट पर 276 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। एजाज पटेल ने एक बार फिर 3 विकेट झटके। पहली पारी की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड ने भारतीय स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। डेरिल मिशेल ने 60 रनों का और हेनरी निकोल्स ने 36 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अन्य खिलाड़ी एक बार फिर अश्विन की सधी हुई गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए। अश्विन ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए। अभी 2 दिन का खेल बाकी है और भारतीय जीत केवल औपचारिकता मात्र लग रही है। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी में मेज़बान भारतीय टीम तीसरे स्थान के लिए खेलते हुए फ्रांस से 1 के मुकाबले 3 गोल से हार गई और चौथे स्थान पर रही। फ्रांस की ओर से तीनों गोल कैप्टन टिमोथी क्लेमेंट ने दागे, जबकि भारतीय गोल सुदीप ने किया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको मनन कुमार का पुनः नमस्कार।